धवला पुस्तक 12वी लेक्चर नंबर 11 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिन्नये जिने नमिउं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें यह चौथा वेदना खंड चल रहा है और उसमें वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार अपना चल रहा है। 12वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 73 पर हम आ गए हैं। पहले हमने ये जो अनुभाग की बात चल रही है यहाँ पर, उत्कृष्ट अनुभाग जो सभी कर्मों का, उसमें अल्प बहुत्व देखा था। उसको जो 64 पद वाला उत्कृष्ट अल्प बहुत्व देखा। अभी हम उन्हीं 64 का जघन्य देख रहे हैं और उसमें सबसे जघन्य किसका है वहां से हमने शुरू कर दिए थे। सबसे जघन को संज्वलन लोभ, और जैसे जहां वो बंध विच्छित हो तो लास्ट में है, तो उसके पहले माया था, उसके पहले तो वो अनंत गुणी होती है। क्रोध तक आए, फिर संज्वलन 4 के बाद देख लेते अभी। हमने नंबरिंग किया है ना, ये हमने शुरुआत की थी नीचे से, यानी जघन्य से शुरुआत की थी। तो हाँ, संज्वलन ले लिया हमने 65 से शुरू किया। संज्वलन लोभ माया, फिर मान और फिर क्रोध, फिर मन परे ज्ञानावरण दानांतरा एक लेवल पर, फिर अवधि ज्ञानावरण अवधि दर्शन और लाभांतरा, ये 3 समान। उसके बाद शुद्ध ज्ञानावरणी और चक्षु दर्शनावरणी भोगांतरा, वो 3 समान। उसके फिर अकेला वो चक्षु दर्शनावरणी लिया, उसके बाद अभिनिबोधि ज्ञानावरणीय परिभोगांतराय लिया, उसके पश्चात वीर्यांतराय। ये सब जो प्रकृतियां हुई, उसके बाद पुरुषवेद के बाद हास्य, फिर रति, फिर जुगुप्सा, फिर भय, फिर शोक, अरति, फिर स्त्रीवेद, उसके पश्चात नपुसक वेद, उसके बाद केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण एक लेवल पर, फिर प्रचला, उसके बाद निद्रा, फिर प्रत्याख्यानावरण। अभी मान क्रोध माया और लोभ लिया। देखो, केवल संज्वलन में उल्टा क्रम लिया था, लोभ माया मान और क्रोध, क्योंकि वो तो अश्वकरण किया हुई थी ना, क्रोध सर्वाधिक हुआ था। संसार अवस्था में क्या है, सबसे कम है मान, फिर क्रोध ज्यादा, माया ज्यादा और लोभ ज्यादा। अभी हम यहाँ जघन्य से उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, तो मान को लिया पहले, फिर क्रोध, फिर माया, फिर लोभ। प्रत्याख्यानवरण के बाद फिर अप्रत्याख्यानवरण, मान, फिर क्रोध, फिर माया, फिर लोभ। उसके बाद निद्रा, प्रचला, फिर स्थान वृद्धि, उसके बाद अनंतानुबंधी के 4, वही ऑर्डर, मान, क्रोध, माया और लोभ। उसके बाद मिथ्यात्व लिया, औदारिक शरीर लिया, यहां तक तो हमने पढ़ा था। अभी हम 73 पेज पर आ गए, यानी सूत्र 157 तक हमने पढ़ा था और उस औदारिक शरीर को हमने 46 नंबर दिया था। बराबर है सबका नंबरी। अभी हम 73 पृष्ठ पर 158 नंबर का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, यानी औदारिक शरीर का जो जघन्य अनुभाग की बात है, उससे वेयुवीय शरीरम अनंत गुणम, उससे वैक्रिय शरीर अनंत गुणा है। क्योंकि औदारिक शरीर की अपेक्षा वैक्रियक शरीर अतिशय प्रशस्त है। तिरिक्खाउम अनंत गुणम, ये 48 नंबर पर आ गया, क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश वो विशुद्धि के द्वारा आयु का बंध नहीं होता। हमने हमेशा देखा है बहुत बार मध्यम परिणामों से आयु बनती है, अति विशुद्ध अति संकलेश में आयु का बंध नहीं होता, इसलिए हमेशा उसको तत्प्रायोग्य शब्द आता है, यानी उसके योग्य परिणाम। अतएव तत्प्रायोग्य संकलेश व विशुद्धि के द्वारा बांधी गई तिर्यंच अपर्याप्त की जघन्य आयु का यहाँ ग्रहण किया गया है। उसमें भी जघन्य आयु जो है, क्योंकि जघन्य बंद की बात चले ना, अनुभाग भी जघन्य है। मनुषाउम अनंत गुणम, हाँ
यहाँ पर जो अनंत गुणा बता रहे,
हाँ अनंत गुणा बता रहे,
वो मतलब उसमें अनुभाग अनंत गुणा अधिक है।
हाँ अनंत गुणा अधिक है, क्योंकि हमने जघन्य से जघन्य की कंपेयर कर रहे, उसका कौन सा अनुभाग अनंत गुणा है, तो जघन्य इसके जघन्य से उसका जघन्य, क्योंकि प्रत्येक प्रकृति में जघन्य से उत्कृष्ट तक भेद हो गए, उसके स्वामी भी जुदे जुदे हमने पहले देखे थे, तो उससे मनुष्यायु अनंत गुणी है। हमने देखा ना ऊपर मनुषाउम अनंत गुणम, क्योंकि वह तिर्यंचायु की अपेक्षा अतिशय विशुद्ध, हमने देखा था शुभ अशुभ प्रकृतियों में कंपैरिजन करेंगे तो शुभ प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा होता है। अब उसके पश्चात तेजय शरीरम अनंत गुणम, उससे तेजस शरीर अनंत गुणा है, ये 50 नंबर पर आ गए और सूत्र को हमने 43 नंबर दिया था। चूंकि तेजस शरीर शुभ प्रकृति है, अतएव इसका जघन्य बंध, जघन्य की बात है ना, देखो देखो शुभ प्रकृतियों में कम अनुभाग कब होगा, संकलेश से है ना, हाँ शुभ प्रकृतियों में कम अनुभाग, क्योंकि विशुद्धि में अधिक पड़ेगा उसमें, और अशुभ होगी तो विशुद्धि में उसका कम होगा, तो यही कह रहे हैं। अतएव इसका जघन्य बंध सर्व संकलिष्ट मिथ्यादृष्टि जीव के होता है, क्योंकि ये प्रकृति निरंतर बंधी है, तो संकलेश हो या विशुद्ध हो, इसकी जो बंध विच्छित्ति नहीं होती है वो कहाँ होती है बंध विच्छित्ति, आठवें में, तब तक तो बनती रहेगी। संकलेश वालों का अनुभाग कैसा बंधेगा, कम बंधेगा, क्योंकि वो सारे शरीर नाम कर्म शुभ प्रकृतियां है, इसलिए कहते सर्व संकलिष्ट मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। मिथ्या दृष्टि के होता हुआ भी वह मनुष्यायु की अपेक्षा अनंत गुणा है। ये दो प्रकृतियों की अपनी विशेषता होती है, क्योंकि शुभ प्रकृतियों के बहुत अनुभाग बंध का अपसरण नहीं होता। हमने देखा ना अनुभाग बंधापसरण, यह हमें तो स्थिति बंधापसरण की बातें मुख्यतः देखी थी। अनुभाग बंध में भी अपसरण ने घटना होता है, तो अनुभाग बंध का घटना किसमें होगा, अशुभ में तो अधिक होगा, घटना अधिक होगा ना, वो विशुद्धि से होता है। अब यहाँ कहते हैं कि संकलेश की अपेक्षा भले ये घट रहा है, परंतु अपसरण ज्यादा नहीं होगा, अपसरण ने घटना, ये बंध के बारे में बात कर रहे। अब कम्मय शरीरम अनंत गुणम, उससे कार्मण शरीर अनंत गुणा है, इसका कारण प्रकृति की विशेषता है। हमने जब उत्कृष्ट देखा था उसमें भी हमने उसकी बात देखी थी, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कंपैरिजन किया था, तो पहले कार्मण को लिया था और उसे अनंत गुणाहीन तेजस को लिया था। यहाँ जघन्य से कंपेयर है तो तेजस का पहले लिया, उससे अनंत गुणा कार्मण का लिया। तिरिक्ख गति अनंत गुणा, उससे तिर्यक गति अनंत गुणी है, ये 52 नंबर आ गया इसको, कारण कि वह सर्व विशुद्ध सातवी पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि नारकी जीव के द्वारा बांधी गई है। देखो क्या कहना चाहते हैं, सातवें नरक के नारकियों के बारे में कुछ नियम मालूम है आपको, मोस्टली नहीं, नियम से, कौन से मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि और सासाधन वाले नियम से तिर्यंच गति ही बांधते हैं। हमने अन्यत्र देखा है, मनुष्यों की बात करेंगे, मनुष्य भी तिर्यंच गति बांध सकते हैं, परंतु जब वो प्रायोगिक लब्धि यानी अभव्य भी जो प्रायोगिक लब्धि में आएगा यानी मिथ्या दृष्टि जो प्रायोगिक लब्धि तक आता है तो उसके जो प्रकृति बंधापसरण होते हैं विशिष्ट प्रकृतियों का बंध रूपते चला जाता है। ऐसे भी तीर्यंच गति मनुष्य गति अल्टरनेटली बनती है परंतु हम उसका अंतिम बंध यानी विशुद्धि में कहाँ तक होगा तो प्रायोगिक लब्धि के जो बंधापसरण है वहाँ वो तो निज गोत्र फिर तीर्यंच गति तीर्यंच गत्यानुपूर्वी जहाँ बनती है वहाँ उसका जो जघन्य अनुभाग बंधेगा क्योंकि तीर्यंच गति ये अशुभ प्रकृति है तो उसका जघन्य अनुभाग कब होगा? समय दृष्टि को तो बनती नहीं है मिथ्या दृष्टि के बनती है तो मिथ्या दृष्टि में अति हाँ अति विशुद्धि उसके जो योग्य विशुद्धि में। अब सभी जीवों के लिए उसका बंधापसरण हो जाता है परंतु नारकी में भी सातवें नरक के नारकी में विशेषता है। क्या विशेषता है? वो तो सम्यक तो के पूर्व का यानी करण लब्धि के अंतिम समय तक तीर्यंच गति नीच गोत्र का ही बंध कर रहा है यानी उसकी विशुद्धि ज्यादा है कि नहीं है क्योंकि अन्य जीवों को प्रायोग्य लब्धि में ही उसका बंधापसरण हुआ था बंध रुक गया था परंतु सातवें नरक के नारकी के लिए अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक तीर्यंच गति बनती है यानी उसकी मिथ्या दृष्टि होते हुए सर्व विशुद्ध जीव है। इसलिए जो फिर से सम्यक तो के सन्मुख यानी अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय प्रायोग्य लब्धि में होते हैं। प्रायोग्य लब्धि के बाद तीन करण परिणाम हो गए करण लब्धि वाले, समझ में आई ना बात? तो हमने जो कल जैसे देखा था कि स्त्री वेद का वो 30 नंबर पर था, हाँ 27 नंबर पर नपुंसक वेद था, उसके पहले कुछ 23-24 नंबर पर वो निज गोत्र तीर्यंच गति वगैरह वगैरह होती है। तो उसका अर्थ क्या है? अन्य जीवों की उतनी विशुद्धि में तीर्यंच गति बनती उसके आगे नहीं बंधेगी तो वहां जितना अनुभाग बंधेगा। अब सातवें नरक का नारकी क्या उससे इतना आगे आ गया क्योंकि उससे कितनी विशुद्धि अनंत गुना बढ़ते बढ़ते अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक अभी नेक समय में वो सम्यक दृष्टि होने वाला है। सम्यक दर्शन होने पर उसके तो तीर्यंच गति नहीं बंधेगी मनुष्य गति ही बंधेगी। इसलिए सातवें नरक का नारकी जो सम्यक तो के सन्मुख है वो अंतिम समय में उसका तीर्यंच गति का अनुभाग जघन्य बनता है ये कह रहे हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा है ना तीर्यक गति अनंत गुणी है कारण कि वह सर्व विशुद्ध सातवीं पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि नारकी जीव के द्वारा बांधी गई है। अब कहते हैं निरय गति अनंत गुणा 53 नंबर पर उससे नरक गति अनंत गुणी है। 74 नंबर पृष्ठ पर आते क्योंकि वह असंगी पंचेन्द्रिय तीर्यंच गति के संक्लेश की अपेक्षा अनंत गुणे संक्लेश के द्वारा बांधी गई है। देखो नरक गति कौन बांधते हैं? केंद्रीय बांधते हैं कि पंचेंद्रिय बांधते हैं? पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय बांध सकते हैं कि नहीं बांध सकते? बांधेंगे तो कहते हाँ कौन बांधते नरक गति? कौन नरक गति का बंध कौन करते? नहीं नरक गति का बंध कौन करते क्योंकि यहाँ नरक गति की बात हो रही है ना। अभी उसमें भी वो कम अनुभाग कौन मान क्योंकि जघन्य बंध की बात चल रही है। नरक गति का जघन्य अनुभाग किसके है यानी बांधने की अपेक्षा ही बात कर रहे। नारकी तो नरक गति बांधेगा नहीं तो बांधने वाले मनुष्य तीर्यंच है। उसमें जो असंगी पंचेंद्रिय जो है तो असंगी पंचेंद्रिय तीर्यंच गति के संक्लेश की अपेक्षा अनंत गुणे संक्लेश के द्वारा बांधी गई है। यहां क्या कहना चाहते हैं? तीर्य गति बांधने वाले का जो संक्लेश होगा उससे नरक गति का बंद करने वाले का संक्लेश ज्यादा होगा अनंत गुणा होगा यही कहते हैं। और बांधने वाला कौन होगा? असंगी पंचेंद्रिय क्योंकि वो कम अनुभाग बांधेगा। संगी पंचेंद्रिय उसके ज्यादा संक्लेश हो गए वो अधिक अनुभाग बांधेगा क्योंकि नरक गति के उत्कृष्ट अनुभाग की बात नहीं कर रहे जघन्य अनुभाग की बात कर रहे। समझ में? असंगी पंचेंद्रिय को क्यों लिया बीच में? असंगी पंचेंद्रिय भी तीर्यंच गति का बंध करेगा और संगी पंचेंद्रिय भी करेगा तो संगी पंचेंद्रिय को उत्कृष्ट संकलेश होगा, नरक गति बांध रहा है। असंगी पंचेंद्रिय को कम संकलेश है तो अनुभाग कम बांधेगा, एक बात। अब असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच गति बांधता है तब उसके जो संकलेश है उससे अधिक संकलेश नरक गति, इसलिए नरक गति का जो जघन्य अनुभाग है वो अनंत गुणा है। कंपेरिजन हमारी तिर्यंच गति के जघन्य से नरक गति के जघन्य की हो रही है। अब 165 मनुष्य गति अनंत गुणा। अब मनुष्य गति शुभ प्रकृति है। अभी जरा विचार करना, हमने पढ़ा भी नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा है। तो मनुष्य गति शुभ प्रकृति है तो उसको बांधने वाले की अधिक विशुद्धि कब होगी? अधिक विशुद्धि में उसको बांधना है। प्रतिभा तैयार बताए, हाँ देवनार की बांधते हैं तो देवनार की मिथ्या दृष्टि भी बांधते हैं, सम्यक दृष्टि भी बांधते हैं, तो विशुद्धि ज्यादा किसके होगी? सम्यक दृष्टि की होगी। हाँ, नौवे के अंत में। अरे आपको करण लब्धि की बात क्यों यहाँ ले रहे हैं? करण लब्धि तो सम्यक तो क्यों पूर्व की बात करें, समय दृष्टि बात है। हाँ, अभी उसमें और विशुद्धि करना है तो हो सकता है अनंत अनुबंधी की विषय, हमने पढ़ा नहीं उसका स्वामित्व। मनुष्य गति का बंध समय दृष्टि देवनार की करते हैं, करेंगे पर विशुद्धि ज्यादा कब होगी? क्योंकि तिर्यंच मनुष्य समय दृष्टि तो बंध नहीं करेंगे, क्योंकि तिर्यंच और मनुष्यों के लिए मनुष्य गति का बंध पहले और दूसरे गुणस्थान में ही होता है, दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित होती है। तो अधिक विशुद्धि है और मनुष्य गति बांध रहा है, ऐसा जीव कौन सा होगा? देवनाथ। समझ में आती है बात? क्योंकि मनुष्य और तिर्यंचों के लिए ये मनुष्य गति का बंध प्रायोगिक लब्धि में ही रुक जाता है। 33 नंबर शायद वो बंध अपसरण का था उसका, वहां तक ही उसके मनुष्य गति बांधती, बाद में तो देवगति का ही बंध करता है। यहां तक समझ में आई बात? देखो अभी आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं मनुष्य गति अनंत गुणी। अभी ये शुभ प्रकृति है वो अनंत गुणी है तो कहां वो बताएंगे। यद्यपि इसका एकेंद्रियों में जघन्य बंध होता है तो भी, क्योंकि एकेंद्रिय, देखो जघन्य की बात करेंगे तो एकेंद्रिय उसके अपेक्षा से उसका जघन्य बंध करेगा, तो भी यह नरक गति की अपेक्षा अनंत गुणी। अच्छा, उसको लिया एकेंद्रियों में लिया, वहां पर नहीं लिया, उत्कृष्ट में लिया था, सॉरी मैंने उल्टा बताया, क्योंकि वो समय दृष्टि वो उत्कृष्ट बंद करेगा, हमको जघन्य करना है। हाँ नहीं नहीं, अनुभाग ज्यादा बंधेगा, मेरी भूल हो गई। हाँ, यानी मनुष्य गति बांधने वाला एकेंद्रीय जीव उसका हाँ संकलेश परिणामों में बराबर उल्टा हो गया ना अपना, मैं उत्कृष्ट उत्कृष्ट की बात देख रही थी। हाँ, उत्कृष्ट अनुभाग देव नारकिन के उत्कृष्ट अनुभाग हमने पहले देखा था, देख लो वो हमने देवगति फिर कारमान उत्कृष्ट में फिर कारमान तेजस और मनुष्य गति फिर औदारिक शरीर देखा था। हाँ, वहां संयत समय दृष्टि देव लिया अनंत गुणी, यानी 48 पेज पर। वह उत्कृष्ट की बात थी, मैंने गड़बड़ी कर दी है ना, अभी आगे बढ़ते यह जघन्य उसका देखना है उल्टा पुल्टा होता है। देखो इसका एकेंद्रिय में जघन्य बंद होता है तो भी यह नरक गति की अपेक्षा अनंत गुणी है, क्योंकि वह शुभ है, यानी जघन्य होते हुए भी वो अनंत गुणी है। देवगति अनंत गुणा, उससे देवगति अनंत गुणी है। यद्यपि इसका जघन्य बंध, अभी यहां पर भी जघन्य की बात है, देवगति का उत्कृष्ट बंध हमने देखा था क्षपक आठवें गुणस्थान में, अब यहां जघन्य बंध की बात है, तो जघन्य बंध जैसे नरक गति का बांधने वाले असंगी है वैसे यहां पर भी लेना। यद्यपि इसका जघन्य बंध, ध बराबर लिखो ब्रह्मा, घ दिखता है, परिवर्तमान मध्यम परिणामों से युक्त असंगी पंचेंद्रियों के होता है तो भी, मनुष्य गति की अपेक्षा देवगति अनंत गुणी है। वो दोनों शुभ प्रकृति है, उनमें कंपैरिजन करेंगे तो देवगति अनंत गुणी, क्योंकि एकेंद्रिय के परिवर्तमान मध्यम परिणामों की अपेक्षा, क्योंकि ऊपर मनुष्य गति बांधने वाले की साथ कंपैरिजन कर रहे, असंगी पंचेंद्रिय के परिवर्तमान मध्यम परिणाम अनंत गुणे देखे जाते हैं। नीजा गोदानम अनंत गुणम, उससे नीच गोत्र अनंत गुणा है। अभी जैसे हमने तिरियंच गति का बंध देखा था, सातवें नरक का नार की सम्यक्तों के सन्मुख वाला, वो वहां तक नीच गोत्र का भी बंध कर रहा है। यद्यपि सर्व विशुद्ध परिणाम वाले सातवीं पृथ्वी के नारकियों में इसका जघन्य बंध होता है, तो भी देवगति की अपेक्षा नीच गोत्र अनंत गुणा है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। आप कहेंगे वो अशुभ प्रकृति है और यहाँ तो, परंतु ये जघन्य की बात चल रही है और वहां तो उसके ज्यादा होगा। यहाँ वो असंगी को नहीं लिया या अन्य किसी को नहीं लिया, क्योंकि नीच गोत्र का बंध तो एक केंद्रीय भी करते है। स्वामित्व में किसको लिया था याद है? नीच गोत्र। हाँ, क्योंकि जब हम वो हमने नीच गोत्र का नहीं देखा था, गोत्र का देखा था। हाँ, वो तो नीच गोत्र की अपेक्षा लगाई थी, पर वहां बंध की अपेक्षा नहीं, सत्ता की अपेक्षा थी। तो किसको लिया था? हाँ, निकालो। हाँ, वो उच्च गोत्र की उद्वेलना की थी, 30 पेज पर। वो सभी पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ साकार वगैरह सब जो विशुद्धि बताने के लिए बताई थी, और उच्च गोत्र का उद्वेलना करके बाद में नीच गोत्र का बंध किया है, ऐसा लिया। वो उसको वहां लिया था। और नाम कर्म में हमने उसको लिया था, किसको? सूक्ष्म निगोद वाले को। अब यहाँ आते फिर अपने पेज पर आना, 74 पर। यहाँ बंध की अपेक्षा है, देखो वहां वेद ने मूल प्रकृति की बात देख रहे थे, वहां उत्तर प्रकृतियों के स्वामित्व अभी हमने देखा ही नहीं है, दो ही है। पर जब हम वहां नीच गोत्र की बात करेंगे, यहां जो यहां इसके उच्च गोत्र की सत्ता है ना नारकी के, फिर से उस पॉइंट पर नारकी को क्यों नहीं लिया आपका प्रश्न है? यहां लिया ना, यहां नारकी को ही लिया। बंद करने में एकेंद्री को क्यों नहीं लिया, यही प्रश्न है ना? तो उससे भी, हाँ, उससे भी यहाँ की विशुद्धि ज्यादा है, विशुद्धि ज्यादा है। विशुद्धि ज्यादा है। हाँ, यानी एकेंद्रिय जितना बंद करता है उससे भी इनकी विशुद्धि ज्यादा है। ख्याल में आई ना बात? यानी क्या, सर्व विशुद्ध परिणाम वाले सातवीं पृथ्वी के नारकियों में इसका जघन्य बंद होता है। हाँ, अनिवर्तीकरण का अंतिम समय, वही वही जो तिरियंच गति में लिया था वही यहां लेना। ये 56 हो गए नंबरिंग। हाँ, और सूत्र को 49 दिया था। अब आगे बढ़ेंगे, 168 को पढ़ना है। अजस कित्ती अनंत गुणा, उससे अयश कीर्ति अनंत गुणी है। अभी हमको उसको जघन्य लेना है। देखो, अगर विश्व संकलेश में चले जाते हैं तो यश कीर्ति का उत्कृष्ट होगा, विशुद्धि में बहुत चले जाते हैं तो यश कीर्ति बढ़ेगी, बंधेगी। समझ में आती ना? तो जघन्य के लिए हमको मध्यम परिणाम देखने पड़ेंगे। तो कहते यश कीर्ति अनंत गुणी है, क्योंकि वह सर्व विशुद्ध प्रमत्त संयत जीव के द्वारा बांधी गई है। यानी वो जितनी विशुद्धि के द्वारा वो बन सकती है वहां तक ले गए, अधिक विशुद्धि है फिर भी अयश बनती है, ऐसा कौन सा गुणस्थान है? तो छठा गुणस्थान। क्योंकि वहां उसकी बंद विच्छित्ति होती, हमने देखी थी। कहते असाता वेदनीयम अनंत गुणम, उससे असाता वेदनी अनंत गुणी है। अब वो भी वहां तक बनती है, आपको याद होगा तो। यद्यपि इसका जगन्य बंध प्रमत्त संयत के ही होता है, दोनों एक ही पॉइंट पर बनती है, तो भी उससे इसका अनुभाग प्रकृति विशेष होने से अनंत गुणा है। ये डिफरेंस प्रकृति प्रकृति के प्रति अलग अलग अपना अपना अनुभाग होता है। ये हो गए 58 हो गए। अब यश कीर्ति और उच्च गोत्र की बात यहाँ 59 और 60 हो जाएगी, उसको हम देखते हैं। पहले वो ऊपर का सूत्र देखेंगे। जस कीर्ति उच्चा गोदम च दोवी तुल्लानी अनंत गुणानी, उससे यश कीर्ति और उच्च गोत्र दोनों ही तुल्य होकर अनंत गुणे हैं। अभी इनका जगन्य अनुभाग बंध की बात चल रही है। विशुद्धि में उसका अनुभव ज्यादा होगा, ये शुभ प्रकृति है। यद्यपि अति तीव्र संक्लेश युक्त पंचेंद्रिय मिथ्यादृष्टि जीवों में इन दोनों ही प्रकृतियों का जघन्य बंध होता है, तो भी देखो अभी जघन्य बंध करना है और ये प्रशस्त प्रकृति है। और प्रशस्त प्रकृतियों को जघन्य बंध के लिए हमने एक इंद्रियों में चले जाते थे, और ये शुभ प्रकृतियों का जघन्य बंध अति संकलेश, वो तो पंचेंद्रियों में ज्यादा संकलेश होगा, तो कहते वो तो होगा तीव्र संकलेश युक्त पंचेंद्रिय मिथ्यादृष्टि जीवों में होता है, तो भी असाता वेदनी की अपेक्षा इनका अनुभाग अनंत गुणा है, क्योंकि शुभ प्रकृतियों के बहुत अनुभाग बंध का अपसरण नहीं होता। ये पहले भी बात बताई थी, यानी उसका अनुभाग बंध बहुत कम नहीं हो सकता, इतने तक रुकता है। अभी 61 देना है साता वेदनी अति संकलेश वाला, उसका जगन्य बंध करता है। जैसे अयश गीता का कहा विशुद्ध, सबसे विशुद्ध ब्रह्मत संयत तक ले गए उसको, और यहाँ सर्व संकलेश वाला यश कीर्ति का जगन्य कर। देखो शुभ में अशुभ में उल्टा पुल्टा करना है। अभी जब मैं हम शुभ की उत्कृष्ट देखते थे अनुभाग, तो विशुद्धि ज्यादा लेते थे। जैसे यश कीर्ति का उत्कृष्ट अनुभाग का बंध कहाँ होगा, बंध दसवीं के अंत में स्थिति अनुभाग वहां बनते, सत्व था चौदहवें तक, उसकी बात नहीं है बंध की। यहाँ ये दंडक जो है मात्र बंध को बताने वाले, सत्व को नहीं। अब कहते सादा वेदनीयम अनंत गुणम, उनसे साता वेदनी अनंत गुणी है, इसके भी जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी सर्व संक्लिष्ट मिथ्यादृष्टि जीव ही है, किंतु प्रकृति विशेष होने से वह उक्त दोनों प्रकृतियों से अनंत गुणी है। उत्कृष्ट में भी सबसे अनंत गुणी तो साता वेदनी को ही लिया था हमने, जघन्य में अल्प बहुत बलगार है। निरया वो बांधते है ना, कौन सी साता वेदनी है ना, बांध सकते हैं, परंतु उससे भी ज्यादा संकलेश इनका है। हाँ देखो कल हमने किसका बताया था, ये जो प्रमत्त संयत जितना बंद करते उससे अनंत गुणा, हाँ वो अनंत गुणा, अनंत गुणा बताया था मैंने। जय धौला की भी बात कल बताई थी ना, वो वही वही थी। पहले भी देखा था ना, वो द्विस्थान का ही बंद करते इस कुटली। हाँ हाँ ज्यादा होता है। साता साता में भी देखा था हमने, द्वितीय चतुस्थान बंद होता है, तो ये द्वितीय चतुर्थ तीनों ही प्रकार के बंध पंचेंद्रियों के होंगे, वो भी संगी पंचेंद्रियों के लिए। और बाकी सब एक इंद्रिय से वो उनके सब द्विस्थान का ही इतना ही डिफरेंस होगा, उसमें हीनाधिक होगा उसका। इसलिए हमेशा संगीत पंचेंद्रियों को लेते, सर्व विशुद्धि में भी और सर्व संकलेश में भी। देखो स्थिति को विचार करना आसान है, थोड़ा अनुभाग में बहुत ये शुभ है कि अशुभ है, फिर संकलेश में कैसा लेना क्या लेना इस तरह से लेते हैं, और जघन्य लेना है उसमें भी तो फिर और सोचना पड़ता है, क्योंकि जघन्य की बात है ना। अगर जघन्य अनुभाग ले हाँ न, उसमें शुभ में अगर अधिक सर लेना है तो हम उल्टो विशुद्धि ज्यादा है, परंतु शुभ का जघन्य हमको लेना है तो सर्व संकलेश भी नहीं ले सकते, परंतु यथा योग्य, क्योंकि अति संकलेश होगा तो शुभ प्रकृति वो बंधी नहीं, यानी जहाँ बन सकती है फिर भी संकलेश में जहाँ तक बंधेगी वो सर्व संकलेश वहाँ ले लेंगे हम। देखो अभी नारकायु की बात है, ऊपर सूत्र पढ़ेंगे, निरयायुम अनंत गुणम, उससे नारकायु अनंत गुणी है। हाँ क्या हुआ, हमने वो अनंत गुणी बराबर लिख, करेक्शन करो ना ये पुस्तक में, आप कहा प्राकृत में देख रहे हैं? नहीं 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 प्राकृत में बराबर है, देखो निरयायुम अनंत गुणम ऐसा है बराबर है, मैंने उसको ऐसा मैंने उसको संधि तोड़कर पढ़ा, निरयायु अमनंत गुणम, अमनंत गुणम ही है वो, कैसा पढ़ना, निरयायुम अनंत गुणम है ना, उसे नरकायु अनंत गुण, यानी वो मुझे लगा आप कुछ हिंदी में कर सकते हैं क्योंकि ऐसा स्वभाव है। देवाऊम अनंत गुणम, वो अमनंत नहीं है, देवाऊम अनंत गुणम, उससे हाँ देवायु अनंत गुणी है। 63 नंबर आ गया कि नहीं, इसका कारण सुगम है क्योंकि अभी नरकायु से वो शुभ प्रकृति है ना। आहार शरीरम अनंत गुणम, उससे आहारक शरीर अनंत गुण है, ये सबके जघन्य से जघन्य की कंपैरिजन कर रहे, क्योंकि वह तत्प्रायोगिक विशुद्धि को प्राप्त अप्रमत्त संयत जीव के द्वारा बांधा गया, और उसका उत्कृष्ट कौन बांधेगा, आठवें गुणस्थान के छठे भाग में जहां बंध विच्छित्ति होती है वो क्षपक में लेंगे, उसका जघन्य सातवें गुणस्थान वाले। तत्प्रायोगिक विशुद्धि लिया, तत्प्रायोगिक विशुद्धि क्यों लिया, अति विशुद्धि में अनुभाग ज्यादा बंधेगा, तत्प्रायोगिक विशुद्धि में कम बंधेगा। इस प्रकार 64 पद वाला जघन्य परस्थान अल्पभूतव समाप्त हुआ, परस्थान यानी सभी प्रकृतियों के आपस में उनके कंपैरिजन की, पहले हमने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट की थी, अब यहाँ जघन्य से जघन्य की कर दी है। ये तो परस्थान, परस्थान क्यों, ये सभी प्रकृतियों ने घाती अघाती सभी प्रकृतियों की इसमें चर्चा, केवल हमने नाम कर्म की वो यहाँ बताई थी हास्यरति, उसको भी लिया था, इसमें नहीं लिया था हास्यरति को, जब उन्होंने अलग से बताया था तब उसकी चर्चा की थी, स्वस्थान में चर्चा की थी वो उत्कृष्ट में, अभी स्वस्थान का जघन्य भी बताएंगे। 64 पदों में हमने देखा था घाती कर्म की 45 लेते हैं, वेदनी की 2 है, गोत्र की 2 है, आयु की 4 है, और नाम कर्म की, शरीर नाम कर्म है, गति नाम कर्म है, और यशस कीर्ति अयशस कीर्ति इतनी ही ली थी। अब इसको जो स्वस्थान अल्पभूतव बताएंगे नीचे के लाइन, अब इससे सूचित होने वाले, यानी वो तो परस्थान तो बताए भी, इसमें से जो स्वस्थान वाली है उनको चुन चुन कर निकालेंगे, उसका अल्पभूतव बताएंगे, तो उसी में से वो हुआ है, इसलिए कहते उसी से सूचित हुआ है, क्योंकि 64 तो पूरे बताए हैं, अभी उसी में से लगाना है। स्वस्थान अल्पभूतों को कहते हैं, अब ज्ञानावरण पर लगाना है, तो ज्ञानावरण के 5 में अल्पभूतों बताने हैं, और उसमें में जघन्य से जघन्य की कंपैरिजन करनी है। तो पहले नंबर पर मन पर ज्ञानावरणीय सर्वमंद अनुभाग से युक्त है, उससे अवधि ज्ञानावरणीय अनंत गुणा है। तीसरे नंबर पर उससे श्रुत ज्ञानावरणीय अनंत गुणा है, उससे अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय अनंत गुणा है, और उससे केवल ज्ञानावरणीय अनंत गुणा है। क्योंकि केवल ज्ञानावरणीय कितना भी जगन्य क्यों न हो, वो तो सर्वघाती रूप से ही रहेगा। हाँ। अब दर्शनावरण की बात है। अवधि दर्शनावरणीय सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे अचक्षु दर्शनावरणीय अनंत गुणा है, उससे चक्षु दर्शनावरणीय अनंत गुणा है, वो गुणी ने गुणा है, उससे केवल वो केकल दिखता है, केवल दर्शनावरणीय अनंत गुणा है। पहले तीनों ही सर्वदेशघाती लिए हैं, फिर यहां से सर्वघाती केवल दर्शनावरण और पांचों निद्रा, तो चौथे नंबर पर लिया केवल दर्शनावरणीय, उससे प्रचला अनंत गुणी, उससे निद्रा अनंत गुणी है, उससे निद्रा निद्रा अनंत गुणी है, उससे प्रचला प्रचला अनंत गुणी है, और उससे स्त्यान वृद्धि अनंत गुणी है। अब ज्ञानावरण हुआ, दर्शनावरण हुआ, अब वेदनीय में दो ही है ना उसकी, तो असाता वेदनीय सर्वमंद अनुभाग से सहित है, और उससे साता वेदनीय अनंत गुणा है। देखो असाता वेदनीय का जो जघन्य बंध छठे में है, और साता वेदनीय का जघन्य फिर भी वो तो प्रशस्त प्रशस्त प्रकृति है, इसलिए वो अनंत गुणा तो होती होती है। वो यथा जो संकलेश में बंधेगी उसको साता वेदनीय का जघन्य। अब मोहनिया संज्वलन लोभ सर्वमंद अनुभाग से सहित है, परस्थान में भी पहले नंबर पर इसी को रखा था, उससे संज्वलन माया अनंत गुणी है, उससे संज्वलन मान अनंत गुणी है गुणा है, उससे संज्वलन क्रोध अनंत गुणा है, ये चार हो गए। उससे पुरुष वेद अनंत गुणा है, मूल में हमने किसको लिया था, चार जगन्य का परस्थान अल्पभूतव में, हाँ वो सब जो देशघाती प्रकृतियां वगैरह उसको लिया था, बरोबर। क्रोध संज्वलन के बाद वो मन परे ज्ञान दानांतराय वगैरह वगैरह उसको लिया था। अभी तो हमको केवल वो मोहनीय की बातें देखनी है, इसलिए यहाँ आया पुरुष वेद। इसको पांच अंक डालना, पांचवा अंक ये फुल स्टॉप लिख, हाँ क्योंकि उसके पहले वो सब प्रकृतियां लिए थी ना, हाँ वो तो जो जिसको हम कहेंगे वो तो देशघाती कुछ प्रकृतियां लिए थे, हाँ हाँ उसमें से सब लिए, उसमें से चुन चुन कर मोहनी की अलग बातें बताई। उससे पुरुष वेद अनंत गुणा है, उससे हास्य अनंत गुणा है, उससे रति अनंत गुणी है, उससे जुगुप्सा अनंत गुणी है, उससे भय अनंत गुणा है, उससे शोक अनंत गुणा है, उससे अरति अनंत गुणी है, उससे स्त्री वेद अनंत गुणा है, और उससे नपुसक वेद अनंत गुणा है। अब कहते उससे प्रत्याख्यानावरण मान अनंत गुणा है, अभी मान फिर क्रोध ऐसा ही है, उससे प्रत्याख्यानावरण क्रोध विशेष अधिक है, उससे प्रत्याख्यानावरण माया विशेष अधिक है, उससे प्रत्याख्यानावरण लोभ विशेष अधिक है, उससे ये हो गया ना लोभ तक। अप्रत्याख्यानावरण मान अनंत गुणा है, उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध विशेष अधिक है, उससे अप्रत्याख्यानावरण माया विशेष अधिक है, और उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभ विशेष अधिक है, उससे अनंतानुबंधी मान अनंत गुणा है, उससे अनंतानुबंधी क्रोध विशेष अधिक है, उससे अनंतानुबंधी माया विशेष अधिक है, उससे अनंतानुबंधी लोभ विशेष अधिक है, और लास्ट में उससे मिथ्यात्व अनंत गुणा है। ये तो मोहनीय की हो गए। अब नाम कर्म की बात करेंगे। नाम कर्म में पूरे 93 में अल्पभूत नहीं है, अपने अपने में जिसको पिंड प्रकृतियां कहते हैं, चार गति के आपस में आयु तो वे अलग हुए, ये नाम कर्म की बात है। गति है, जाति है, शरीर है, संस्थान है, अंगोपांग है, वगैरह वगैरह नहीं, पहले आयु की बात है, यहाँ बाद में नाम कर्म के लिए, पहले आयु कर्म ले रहे, यहाँ आयु को पहले लिया ना, बाद में नाम कर्म लेंगे। तिर्यक आयु सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे मनुष्यायु अनंत गुणी है, उससे नारकायु अनंत गुणी है, और उससे देवायु अनंत गुणी है। अब यहां आती है नाम कर्म की बात। अभी ये चार गतियों में अल्पभूतव लगा रहे। तिर्यक गति सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे नरक गति अनंत गुणी है, इसका जघन्य, उससे मनुष्य गति अनंत गुणी है, और उससे देव गति अनंत गुणी है। अब जाति, चतुरिंद्रिय जाति सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे तीनिंद्रिय जाति अनंत गुणी है, उससे द्विंद्रिय जाति अनंत गुणी है, उससे एकेंद्रिय जाति अनंत गुणी है, और उससे पंचेंद्रिय जाति अनंत गुणी है। क्या कहना चाहते हैं? ये एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय जाति वो सब अशुभ नाम कर्म है। अब उसमें अधिक अशुभ कौन है? तो एकेंद्रिय, इसलिए चतुरिंद्रिय, तीनिंद्रिय, द्विंद्रिय, एकेंद्रिय लिया। पंचेंद्रिय जाति तो शुभ प्रकृति है, तो इन सबसे वो अशुभ से शुभ की कंपेरिजन करेंगे तो अनंत गुणा हो जाता है। अब शरीर नाम कर्म, औदारिक शरीर सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे वैक्रिक शरीर अनंत गुणा है, उससे तेजस शरीर अनंत गुणा है, उससे कार्मण शरीर अनंत गुणा है, और उससे आहारक शरीर अनंत गुणा है। ये सभी शुभ प्रकृतियां हैं, पांचों ही शरीर नाम कर्म। जैसे हमने एकेंद्रीय जाति और पंचेंद्रीय में वगैरह देखा था, यहाँ पर भी ऐसा ही ना, छह संस्थान है, उसमें समचतुर संस्थान जो है वो शुभ है, उसको लास्ट में रखेंगे, बाकी जो अशुभ है उसमें उल्टे क्रम से नंबर देंगे। यानी जब हमने उत्कृष्ट से देखना था तो भी उल्टा दिया था, अब यहाँ देखो, यहाँ उल्टा नहीं है। न्यग्रोत परिमंडल संस्थान सर्व मंद अनुभाग से सहित है, अशुभ में कैसा लेना है? पहला, हाँ, कम अशुभ वाला लिया, कम अशुभ में, हाँ। उससे स्वाति संस्थान अनंत गुणा है, उससे कुब्जक संस्थान अनंत गुणा है। देखो उत्कृष्ट अनुभागों में हमने अनंत गुणा हीन लगाना था, उसमें तो अलग बात की थी, इसलिए वहां हुंडक को पहले लिया था, शुभ के बाद हुंडक को लिया था। यानी उत्कृष्ट में जब हमने नंबरिंग किया था, पहले समचतुर संस्थान, फिर हुंडक, फिर उल्टे क्रम से लिया था। अब यहाँ पहले, हाँ, पहले अशुभों में और फिर समचतुर को लास्ट, अशुभों में हुंडक को लास्ट और बाद में समचतुर संस्थान। तो न्यग्रोत परिमंडल संस्थान सर्व मंद अनुभाग से सहित है, उससे स्वाति संस्थान अनंत गुणा है, उससे कुब्जक संस्थान अनंत गुणा है, उससे वामन संस्थान अनंत गुणा है, उससे हुंडक संस्थान अनंत गुणा है, और उससे सम करो ये बराबर मस हुआ है, समचतुरस्र संस्थान अनंत गुणा है। ये समझ में ना, इसे क्यों किए उन्होंने अल्पभूत? ये संस्थान के बाद अंगोपांग, क्योंकि वो देखो गति जाती हुई ना, शरीर हुआ, क्या कहते हैं, हाँ, शरीर के बाद अंगोपांग नहीं आता, डायरेक्ट शरीर के बाद संस्थान आता है, फिर अंगोपांग आता है, और फिर सहनन आता है, ये उनका क्रम ही है। देखो अंगोपांग में क्या है, औदारिक शरीर अंगोपांग सर्व मंद अनुभाग से सहित है, कौन सा नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो उसमें तो था ही नहीं, उत्कृष्ट के स्वस्थान में था, हाँ, नहीं नहीं दंडक में तो था नहीं, दंडक में नाम कर्म के गति जाति और यशस्कृति, यशस्कृति इतना ही लिया था। उनका यही कहना था कि शरीर के बाद अंगोपांग लेना कि संस्थान लेना, तो हमेशा शरीर के बाद संस्थान लेते फिर अंगोपांग लेते, यही क्रम है सब जगह उनका। अंगोपांग में औदारिक सर्वमंद अनुभाग वाला, उससे वैक्रियक शरीर अंगोपांग अनंत गुणा, और उससे आहारक शरीर अंगोपांग अनंत गुणा है। सहननों के अल्प बहुत्व की प्ररूपना संस्थानों के समान है। अभी पहले अशुभ लेंगे और वो 2, 3, 4, 5 इस नंबर से लेंगे। ये पहला नंबर आएगा वज्र नाराज, दूसरा आएगा नाराज, तीसरा आएगा अर्ध नाराज, चौथा आ जाएगा कील, पहला लास्ट में आएगा वज्र वृषभ। उत्कृष्ट में पहला लिया था और बाकी अनंत गुणाहीन लिए थे। यहाँ जगन्य में लेना है पहला वज्र नाराज। देखो हमने उस संस्थान में क्या लिया था, निग्रोध परिमंडल को लिया था, यानी जो हम 1, 2, 3, 4 लेते थे उसे 2, 3, 4, 5, 6 और फिर एक नंबर। यहाँ पर भी ऐसा करना, 2, 3, 4, 5, 6 फिर एक नंबर, यानी पहले वज्र नाराज, फिर नाराज, फिर अर्ध नाराज, फिर कीलित, फिर असंप्राप्त सुपाटिका और लास्ट में वज्र वृषभ नाराज सहन। अब उसके बाद ये वर्णादि, सहनन के बाद वर्णादि चार है। वर्णादि में अप्रशस्त वर्ण चतुष्क सर्वमंद अनुभाग से सहित है, क्योंकि वो अप्रशस्त प्रकृति है, उससे प्रशस्त वर्ण आदि चतुष्क अनंत गुणा है। जिस प्रकार गति के अल्पभूतों की प्ररूपना की गई है, उसी प्रकार अनुपूर्वी के अल्पभूतों की प्ररूपना करनी चाहिए, यानी अनुपूर्वी की भी वही होगी। हाँ, तिरंज गत्यानुपूर्वी, नर गत्यानुपूर्वी, फिर मनुष्य गत्यानुपूर्वी, बाद में देवगत्यानुपूर्वी। अब अगुरु लघु आदि उसमें बता रहे हैं। उपघात सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे परघात अनंत गुणा है, उससे उच्छ्वास अनंत गुणा है और उससे अगुरु लघु अनंत गुणा है। हम क्रम कैसा कहते हैं, अगुरु लघु परघात उपघात और उच्छ्वास ऐसा लेते, परंतु उच्छ्वास को पहले लेना, अगुरु लघु अनंत गुणा है। देखो इनमें से अप्रशस्त कौन सी है और प्रशस्त, उपघात अप्रशस्त है, बाकी तीनों प्रशस्त है। इसलिए देखो उपघात को पहले नंबर पर लिया क्योंकि वो अप्रशस्त है। अब प्रशस्तों में ये नंबरिंग लगाया, परघात उच्छ्वास और अनंत अनंत गुणा। अब विहाय गति में अप्रशस्त विहाय गति सर्वमंद अनुभाग से सहित है, उससे प्रशस्त विहाय गति अनंत गुणी है। त्रसाधिक 10 युगलों के, मैंने यही 10 युगल कहे थे ना, आपको याद होगा, त्रस स्थावर आदि 10। हाँ, परंतु वहां उन्होंने विहाय गति को छोड़ा था। तो त्रसादिक देखो, हमने वो उत्कृष्ट जो था ना, उसके बाद ये चर्चा की थी स्वस्थान में। उत्कृष्ट के 60
ये है ना अपना, इसके पहले
तो हाँ स्वस्थान, उत्कृष्ट का स्वस्थान, हाँ 62 पर देखो। वहां तो इस कॉमनली लिखा था सभी युगलों में प्रशस्त तीव्र अप्रशस्त, यहाँ विहाय गति उन्होंने लिखना रह गई थी, है ना। तो मैंने बताया था कि वहां विहाय गति लिखो करके, और बाद में त्रसस्थावलादि सब युगल ऐसा वहां पर भी लिखा था, यानी 10 युगल हमने देखे थे, सब युगल यानी 10 युगल। ये अभी 10 युगल आते हैं, वो तो पेज नंबर आए अभी। हाँ, अभी तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया ना 10 युगल। अभी देखते हैं। साता साता वेदनी के समान है। यानी अप्रशस्त को पहले लेना मंद अनुभाग वाला, प्रशस्तों को अनंत गुना लेना, गोत्र में लेना भी। नीच गोत्र सर्व मंद अनुभाग से सहित है, उससे उच्च गोत्र अनंत गुना है। अब अंतराय कर्म, दानांतराय सर्व मंद अनुभाग से सहित है। इस प्रकार परिपाटी क्रम से आगे की चार अंतराय प्रकृतियां उत्तरोत्तर अनंत गुणी है। जैसे हम दान लाभ भोग उपभोग वीर्य उसके आगे अंतराय शब्द लगाते हैं, उसी क्रम से वीर्यांतराय को लास्ट में रखना। चार ने आगे की चार लिए ना, दानांतराय को छोड़कर आगे की, यानी लास्ट में वीर्यांतराय आ जाएगा। इस प्रकार जघन्य स्वस्थान अल्प भूतव समाप्त हुआ, यानी इसमें उत्कृष्ट या जघन्य की जो ऑर्डर है वो सेम है अंतराय के बारे में। वहां अनंत गुणा हीन था, यहाँ अनंत गुणा है। अब यहां से आगे चूलिका को कहते हैं। ये अनुभाग की जो कथन हुआ, यहाँ पर हमने वो पदमीमांसा लिखा, स्वामित्व लिखा और उसके जो अल्प भूतव देखा, और उसमें भी अल्प भूतव में सूत्रों के द्वारा वो 64 पद भी देखे, उसमें स्वस्थान परस्थान अल्प भूतव भी देख लिया। अब इसके वो इसी के बारे में यहाँ चूलिका बताएंगे। वही इस प्रकार है, ये पढ़म चूलिका ऊपर लिखा है ना, पहले हम सात और आठ नंबर का जो गाथा सूत्र जिसको कहेंगे, देखो तीन सूत्र गाथा सूत्र तो हमने उत्कृष्ट के 64 का दंडक देखा और आगे के तीन जघन्य का देखा। अब सात और आठ जो है ये दोनों हम पढ़ेंगे, फिर दोनों का अर्थ नीचे देखेंगे। जो हमें दो श्रेणी रूप से जो होते हैं ना गुण श्रेणी निर्जरा, उसके जो स्थान हमने तत्वार सूत्र में देखे अनेक जगह पढ़ते, वही बात 11 स्थान यहाँ बता रहे। देखो हम गाथा पढ़ेंगे। सम्मत्तुपत्ति विय सावय विरदे अनंत कम्मंसे दंस मोह खवये कसाय उवसामये उवसंते खवये यखीण मोहे जिनेय नियमा भवे असंखेज्जा तव विवरीदो कालो संखेज गुणाए सेड़िए। देखो ये अभी उसके नाम बताएंगे, उसमें कहते वो असंख्यात गुणा वाले हैं। यानी निर्जरा का प्रमाण असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा है, और परंतु निर्जरा का काल उससे उल्टा है। यानी यहाँ जो पहला नंबर पर सम्यक उत्पत्ति में जितनी निर्जरा होती है उससे श्रावक की असंख्यात गुणी होती है, परंतु काल उसका जो है वो संख्यात वे भाग प्रमाण हो जाता है। निर्जरा असंख्यात गुणी और गुण श्रेणी का जो आयाम है वो संख्यात वे भाग होता है, संख्यात गुणाहीन होता है। यहाँ कहते उल्टे क्रम से संख्यात गुणा हो जाता है, बात एक ही है। अब इसको पढ़ेंगे, नंबरिंग करो आप इसमें। 11 नंबर आते हैं। सम्यक तोत्पत्ति अर्थात सातिशय मिथ्या दृष्टि, एक नंबर देना। हमने पहले देखा था ना सम्यक के काल में ही अपूर्वकरण से वो गुणश्रेणी आदि कार्य शुरू हो जाता है, और वही प्रश्न भी उठा था कि उसके पहले गुणश्रेणी हो जाती है। हाँ हो जाती है, क्योंकि अभी वो करण लब्धि में एंटर हुआ है, वो नियम से सम्यक दृष्टि होने वाला है। तो सम्यक उत्पत्ति के कारण काल में औपशमिक समय दृष्टि ऐसा होता है, वो तो कहने की बात है। यानी पहले से चौथे में जाते समय की बात है वो, क्योंकि चौथे में हर समय तो गुणश्रेणी निर्जरा नहीं है। स्टार्टिंग में कब, स्टार्टिंग में कभी होती है वो गुणश्रेणी संक्रमण होता है। गुणश्रेणी वो बनती है तो अपूर्वकरण में बनती है, अपूर्वकरण के काल से शुरू होती है। कहाँ रहेगी, अपूर्वकरण और अनित्यकरण में ही वो होगी। हाँ यानी तब वो मिथ्या दृष्टि है, तब वो मिथ्या दृष्टि है ये कहना चाहते। यह स्पष्ट शब्द में लिखा ना सातिशय मिथ्या दृष्टि। हाँ हाँ इतने तो इसे चौथे के ऐसा ही लगता है, चौथे नहीं चौथे औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करने पर ये गुण ये ऐसे जो गुणश्रेणी वगैरह का कार्य तब हो जाता है। यानी वहाँ हम हमेशा बताते हैं कि मिथ्या, और ये चर्चा भी पंचलब्धि में भी लिखा है कि यहाँ मिथ्या तो होते हुए भी निर्जरा कहते हो तो हाँ, या बिल्कुल यही शुरुआत होती है उसकी। अपूर्व करण में जो चार बातें बनती है, कौन सी? गुण श्रेणी होता है, यहाँ पर गुण संक्रमण नहीं होता, वो बाद में होता है। स्थिति कांड घात और अनुभाग कांड घात, चौथी बात यहाँ नहीं होती है, अन्यत्र होती है, ये बात वहां स्पष्ट लिखी भी थी। देखो, सम्यक तो उत्पत्ति अर्थात सातिशय मिथ्या दृष्टि, दो नंबर पर श्रावक अर्थात देशवृत्ति, अभी जो पांचों गुणस्थान है उसके कंटिन्यूएशन में गुण श्रेणी चलती है। हाँ, फिर तीसरे नंबर पर विरत अर्थात महावृत्ति, यानी छठा सातवां गुणस्थान है। चौथे नंबर पर अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वाला, देखो ये भी यहाँ पर भी तीन करण परिणामों के द्वारा विसंयोजन होता है, और वहां जो निर्जरा है वो बहुत ज्यादा है, सबकी तो होगी होगी, अनंतानुबंधी की तो विशेष हो जाएगी, उसमें तो गुण संक्रमण ज्यादा होगा, अन्य प्रकृति रूप होता है, मतलब इस यहाँ पर जो गुण श्रेणी होती है ये निर्जरा होती है वो उससे भी ज्यादा है, मुनियों से भी ज्यादा है। अनंतानुबंधी की विसंयोजन तो चौथा गुणस्थान वाला भी कर सकता है, पर यहाँ उतने अंतर्मूर्त में उसकी गुणश्रेणी उस समय बढ़ेगी। दर्शन मोह का क्षपक पांच नंबर है, यानी जब दर्शन मोहनी की क्षपना होती है उस काल में, जो अंतर्मूर्त का काल है उसमें भी तीन करण होते हैं, उस समय की बात है। छठे नंबर पर चारित्र मोह का उपशामक, उपशामक कहने से आठवां नौवां और दसवां लेना, हाँ श्रेणी का, उपशम श्रेणी का। और सातवें नंबर पर उपशांत कषाय, यानी ग्यारहवें वाला लेना। अब ग्यारहवें में जितनी निर्जरा है उससे भी क्षपक, यानी आठवां नौवां और दसवां क्षपक, यानी तीन गुणस्थान लेना। नौवे पॉइंट पर क्षीण मोह, यानी बारहवां गुणस्थान, उससे भी दसवें पॉइंट पर स्वस्थान जिन, यानी केवली सामान्य से। और ग्यारहवें नंबर पर जिनेन्द्र भगवान में दो भाग किए, एक स्वस्थान केवली और एक योग निरोध में प्रवृत्त जिना। हाँ, क्षपक लेना आठवें नंबर पर, क्षपक। हाँ, एक्चुअली हमने तो स्वस्थान केवली और समुद्रात केवली ऐसे भी देखे थे ना, उसमें योग निरोध में प्रवृत्त लिए। उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, परंतु निर्जरा का काल उससे विपरीत, दसवां स्वस्थान जिन और ग्यारहवां योग निरोध में प्रवृत्त जिन, योग निरोध करते हैं ना। हाँ, तेरहवे गुणस्थान, योग निरोध भी तेरहवे में ही होता है अंत में। हाँ? ना, समुद्घात के बाद योग निरोध होता है, समुद्घात के अंतर्मूर्त बाद होगा, अंतर्मूर्त चला जाता है बीच में, लोक पूरण वो कांडघात होते हैं वहां पर, एक एक समय में एक एक। निर्जरा तो चल ही रही है वहां पर, वहां कांडघात ज्यादा हो रहे हैं, परंतु उसका वहां उसको यहां नहीं लिया है, अन्यत्र केवली समुदात वाले लेते हैं। अब यहाँ बताएंगे एक एक की चर्चा करेंगे। हाँ, अभी निर्जरा का काल जो है उससे विपरीत अर्थात आगे से पीछे की ओर बढ़ता हुआ है, जो संख्यात गुणित श्रेणी रूप है, यानी जिसको हम गुण श्रेणी का आयाम कहेंगे, वो संख्यात गुणा विपरीत क्रम से, यानी सबसे छोटी गुण श्रेणी वो योग निरोध वाले की भी, उससे स्वस्थान केवल के, जो ग्यारहवें से दसवें, दसवें से नौवें, नौवें से आठवें, ये नंबर गुणस्थान की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर, तो उनका विपरीत क्रम से संख्यात गुणा संख्यात गुण, यानी जो मिथ्यात्व से सम्यक तो प्राप्त कर रहा है उपशमिक सम्य दृष्टि, उसका गुण श्रेणी का आयाम लंबा होगा, ये ख्याल में आती बात। ये दोनों ही गाथाएं निर्जीर्ण होने वाले प्रदेश और काल से विशेषित, यानी ये जो गुण श्रेणियों की बात, उसमें कितने प्रदेश यानी परमाणु खिरते हैं और उसका काल का प्रमाण कितना है, इससे विशेषित ग्यारह गुण श्रेणियों का कथन करती है। ये गुण श्रेणी जहाँ बनती है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है?
यहाँ जो लिखा है,
हाँ,
तो पॉइंट जो आपने बताया, दर्शन मोह का क्षपक, यानी दर्शन मोह का क्षपक यानी संयोजन करने वाला और क्षपक करने वाला अलग अलग
अलग अलग है। देखो देखो, क्या इनका प्रश्न इसलिए है कि हमने देखा था कि दर्शन मोनी की क्षपना करता है वह जीव पहले विसंयोजना करता है और बाद में क्षपना करता है ना? चाहिए सम्यक तो प्राप्त करने वाला जीव है, परंतु उपशम, देखो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने के लिए तीन करण परिणाम मांडे, उससे अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई, फिर अंतर्मूर्त में कुछ कार्य नहीं होता, उसको कहीं विश्राम लिया और फिर दर्शन मोनी की क्षपना होती है। परंतु ऐसा भी होता है अनंतानुबंधी की विसंयोजना मात्र करने वाले जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं, सातवें नरक का नारकी भी कर सकता है, हाँ उसकी जो अलग अलग कोई जो विशुद्धि होगी, परंतु उतना मात्र करके रुक गया है वो, आगे उसको दर्शन मोह की क्षपना होनी ही चाहिए ऐसा भी नहीं है। हाँ वो तो ऑप्शनल है, और दर्शन मोह की क्षपना कौन, वो कर्म भूमि का मनुष्य वगैरह वो कंडीशन सब लगेगी, हाँ वो तो हो जाएगी उसके, यानी अनंतानुबंधी की विसंयोजना ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर उसकी संयोजना हो सकती है, पर जो उसकी विसंयोजना के बाद दर्शन मोने का यानी क्षय कर देता है, फिर उसके अभी अनंतानुबंधी वापस नहीं लौटेगी। हाँ हाँ उद्वेलना अलग बात है, विसंयोजना अलग बात है, नहीं उसको उद्वेलना नहीं कहेंगे, हाँ क्योंकि उद्वेलना में जो कुछ प्रकृतियां नष्ट हो जाती है, ये संयोजना हो जाती है उसमें, वो प्रकृतियां तैयार होती है, कैसे, पहले अन्य प्रकृति रूप हुई थी, अब वो जीव दूसरे गुणस्थान में आया या पहले में गया, तो अनंतानुबंधी का बंध चालू हो जाता है। बंध के साथ क्या होता है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन वाले परमाणु भी अनंतान रूप होकर वहां आते हैं, दोनों ही बातें होती हैं, उसको उद्वेलना नहीं कहेंगे। उद्वेलना में विशिष्ट प्रकृति नष्ट हो जाती है घातते घातते, ऐसा यहाँ कहीं नहीं होता है। और आप कहेंगे वो अनंतान इसको विसंयोजना को उद्वेलना को, वो भी बात नहीं है। हाँ देखो यहाँ हम अभी हमने वो पढ़ा 78 पर, अभी यहाँ आते हैं, हाँ पेज नंबर 79 पर आते हैं। शंका, भाव विधान का कथन करते समय अपनी बात किसकी है, वेदना का भाव यानी कर्मों का भाव, जो अनुभाग की बात चल रही थी तो उसका विषय चल रहा था, तो अभी चुलिका में यहाँ गुणश्रेणी निर्जरा की बात कहाँ से लाई, ये उनका प्रश्न है ना। भाव विधान का कथन करते समय ग्यारह गुण श्रेणियों में होने वाली प्रदेश निर्जरा का कथन और उसके काल का कथन किस लिए करते हैं, ये तो कन्फ्यूजन उसका नहीं मिट रहा है, इसलिए शंका पूछ ली, क्योंकि ना यहाँ प्रदेश विभक्ति का कथन है, ना कुछ अन्य बातें हैं और ना ही कुछ क्षपणा का विधान है, तो इसकी बातें यहाँ क्यों उठाई। समाधान, विशुद्धियों के द्वारा अनुभाग क्षय होता है और उससे प्रदेश निर्जरा होती है, इस बात का ज्ञान कराने से जीव और कर्म के संबंध का कारण अनुभाग ही है, इस बात को बतलाने के लिए उक्त कथन किया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ, क्या कहते हैं, जहाँ विशुद्धि ज्यादा है अनुभाग क्षय, तो ये तो अशुभ में होता है और उससे प्रदेश निर्जरा होती है, और निर्जरा तो किस में होती है, सभी कर्मों में होगी। इस बात का ज्ञान कराने से जीव और कर्म के संबंध का कारण अनुभाग है, इस बात को बतलाने के लिए इसको कह रहे, अथवा दूसरा कारण बता रहे, वेदना द्रव्य विधान में, ये द्रव्य विधान हमने पढ़ा था याद है कि भूल गए, पहली ने कौन सी, दसवीं पुस्तक, उसमें द्रव्य विधान ने संख्या देखी थी, और ग्यारहवीं पुस्तक में क्षेत्र और काल देखा था हमने। तो कहते कि वेदना द्रव्य विधान में जघन्य स्वामित्व की प्ररूपना करते हुए गुणश्रेणी निर्जरा की सूचना की गई थी, क्योंकि जघन्य स्वामित्व जब बताया है, जघन्य स्वामित्व प्रदेशों का, द्रव्य विधान यानी परमाणु की संख्या मिनिमम कब होगी? मेरा प्रश्न है, परमाणु की संख्या मिनिमम कब होगी? कहाँ पे लास्ट? चौदहवें के अंत में। अभी इन जनरल चौदहवें के अंत में कहेंगे। अलग अलग प्रकृतियों की पूछेंगे तो अलग अलग पॉइंट पर बतानी पड़ेगी, जहां जिसका क्षय हो रहा है। अब ज्ञानावरण का कहाँ होता है, किसका क्या होता है, उसमें भी उन्होंने गुणित कर्मांशिक क्षपित कर्मांशिक लगाए थे, आपको याद होगा। तो ये बहुत डिटेल में नहीं जाना है, परंतु वहां वो गुण श्रेणी की बात भी आई थी। वहां पर देखो तो द्रव्य विधान में वो जघन्य स्वामित्व की प्ररूपणा करते हुए अनुसमयावर्तन अनुभाग को घटाता है। वहां पर हमने प्रदेशों की, हाँ प्रदेशों की संख्या किस पर नहीं? देखो स्थिति तो समान हो जाती है नौवे गुण स्थान से, कांडघात भी समान हो जाते हैं, परंतु यहाँ बात किसकी चल रही? प्रदेशों की। परमाणु की संख्या तो क्षपित और गुणित कर्मांशिक के अनुसार अलग अलग होगी, ये बात कहना चाहते। तो वहां गुणश्रेणी निर्जरा की सूचना की गई थी, इन्हें रीजनिंग में उसकी बातें बताई थी। उस गुणश्रेणी निर्जरा का कारण भाव है, यानी यहाँ भावों पर घटित करना है। वो निर्जरा यहाँ भावों के अनुसार वहां उच्च निमित्त से बनती है, अनुभाग। हाँ अनुभाग का क्षय होना ये बात है, अतएव यहाँ भाव विधान में उसके विकल्पों का विकल्प ने उसके जो भेद है, उसके जो अलग अलग गुण श्रेणी के जो हमने 11 भेद देखे, विकल्पों का कथन करने के लिए यह कथन किया जा रहा है। पूर्वोक्त गाथा में सम्मतुपत्ति यानी सम्यक तो उत्पत्ति ऐसा कहने पर दर्शन मुंह का उपशम करके प्रथम सम्यक तो की उत्पत्ति का ग्रहण करना चाहिए, यानी औपशमिक समय दृष्टि की बात वहां लेनी चाहिए। सावय कहने से देश विरति का ग्रहण किया गया है, विरदे कहने पर संयत का ग्रहण करना चाहिए, अनंत कम्मों से ऐसा निर्देश करने कहने पर अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना का ग्रहण करना चाहिए। वैसे हमने पढ़ लिया है, मूल हिंदी के अनुवाद में उन्होंने बता दिया था, दंशन मोहक खवगे ऐसा कहने पर दर्शन मुनि के क्षपक का ग्रहण करना चाहिए, कसाय व सामगे कहने पर चारित्र मुनि का उपशम करने वाले जीव का ग्रहण करना चाहिए, वसंते कहने पर उपशांत कषाय जीव का ग्रहण करना चाहिए, खवगे कहने पर चारित्र मुंह की क्षपणा करने वाले जीव का ग्रहण करना चाहिए, और क्षीण मोहे ऐसा कहने पर क्षीण कषाय जीव का ग्रहण करना चाहिए, जिने कहने पर स्वस्थान जिनों का, ये नो के ऊपर बिंदी लगा लो, और योग निरोध में प्रवर्तमान जिनों का ग्रहण करना चाहिए। यह असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा की बात है ना, इसलिए उसको, हाँ क्योंकि वहां प्रश्न ऐसा होता है कि जो परिणाम पूरे वितरकता के परिणाम है, वहां कोई विशुद्धि की बढ़ने की बात नहीं है, तो असंख्यात गुणा क्यों कहते हैं, है ना? फिर भी विशिष्ट कार्य होता है योग निरोध आदि, या उसके जो हमने देखे थे कि समुद्घात होता है, उसमें कुछ विशेषता बनती है। इस गाथा सूत्र कलाप के द्वारा, गाथा सूत्र है नहीं, 11 प्रकार की प्रदेश गुणश्रेणी निर्जराओं की प्रारूपणा की गई है। प्रदेश यानी परमाणुओं की जो गुणित प्रमाण में श्रेणी रूप रचना होती है, और उसका वो निर्जरा भी होती है, उसकी वहां चर्चा की है। तव विवरिदो कालो, परंतु इनका गुणश्रेणी निक्षेप अध्वान, जिसको हम गुणश्रेणी का आयाम कहते हैं, यानी गुणित प्रमाण में जो परमाणु दिए जाते हैं उसको कहेंगे गुणश्रेणी निक्षेप, और उसका अध्वान यानी निषेकों का काल जो प्रमाण, इसको हम गुणश्रेणी अध्वान यानी उसकी जो लंबाई, जिसको कहेंगे काल, काल आयाम को हम कहेंगे अध्वान। कितने काल तक वो गुणित प्रमाण से उस निषेय को में लेने, काल लेने से वो नंबर ऑफ निषेय की बात होती है, हम उसको गुण श्रेणी आयाम कहेंगे। उससे विपरीत है अर्थात आगे से पीछे की ओर वृद्धिंगत होकर जाता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी जो हमने नंबरिंग किए तो उसमें वो तो काल संख्यात विभाग प्रमाण होता चला जाता है। पूर्व के समान असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से प्राप्त वृद्धि का प्रतिषेध करने के लिए संख्येज गुणाए श्रेणी यह कहा गया है। क्या कहते हैं, ये कहने की जरूरी क्या थी? तो उसका काल भी असंख्यात गुणा होता होगा तो कहने उल्टे क्रम से होता है, गुण श्रेणी असंख्यात गुणा बढ़ती है और काल छोटा छोटा होता चला जाता है। इस प्रकार दो गाथाओं के द्वारा कही गई 11 गुण श्रेणियों का मंद बुद्धि शिष्यों का अनुग्रह करने के लिए पुनः दूसरी बार कथन करते हैं। इसके आगे का सूत्र कहते, जैसे उन्होंने पहले 64 दंडक बताया फिर हमारे लिए, फिर उसको दोबारा खोलकर बताया, वैसे यहाँ पर भी सूत्र बनाकर फिर उसकी रचना करेंगे। सबसे पहले 175 नंबर का सूत्र एक नंबर देना, उसको बाद में सवत्थवो दंसन मोह उपसामयस्य गुण श्रेणी गुणों। अभी इसमें जो गुणित प्रमाण में जो श्रेणी रूप रचना होती है तो उसमें गुणित प्रमाण में जो कहा है ना, तो हम ऐसा भी देखते हैं चार चार गुना वो हो सकता है, आठ आठ गुना हो सकता है, 32 गुना हो सकता है। इसका जो गुणकार जो है गुणित प्रमाण में जो दिया है उसमें जो गुणकार का प्रमाण है वो भी जुदा जुदा होगा। ऐसा नहीं कि हम मान लेते कि चार गुना चार गुना चार गुना दे रहे तो हम कहेंगे वो चौथे गुण स्थान में जाने वाले कि चार गुना चार गुना चार गुना है, परंतु गुण श्रेणी लंबी है, और पांचवे गुण स्थान वाले को उतना ही गुणकार है और गुण श्रेणी छोटी है, ऐसा नहीं है। छोटी तो हो ही रही है पर गुणकार भी बढ़ रहा है, गुणकार का प्रमाण भी गुणित प्रमाण में है ये कहना चाहते हैं। फिर से यहां पढ़ेंगे, देखो गुण शब्द का अर्थ गुणकार है, यहां लिखा ना दर्शन मोह का उपशम करने वाले का गुण श्रेणी गुणकार सबसे श्रोक है। गुण श्रेणी अल्प ऐसे नहीं बताया, गुण श्रेणी गुणकार की बात पहले उठाई। गुण शब्द का अर्थ गुणकार है तथा उसकी श्रेणी आवली या पंक्ति का नाम। श्रेणी यानी जो हमने पंक्तिबद्ध रचना करते हैं, आवली का अर्थ क्या है? वो जघन्य युक्ता संकेत वो नहीं है, दीपावली किसको कहते हैं? पंक्तियों को। आवली यानी वो पंक्ति। तो श्रेणी आवली या पंक्ति का नाम गुण श्रेणी है, समझ में है ना? ये आवली उस अर्थ में लिया, जिसको दीपों की मालिका या आवली उस अर्थ में आता है। दर्शन मोह का उपशम करने वाले जीव का प्रथम समय में निर्जरा को प्राप्त होने वाला द्रव्य स्तोक है, उससे द्वितीय समय में निर्जरा को प्राप्त हुआ द्रव्य असंख्यात गुणा है, उससे तीसरे समय में निर्जरा को प्राप्त हुआ द्रव्य असंख्यात गुणा है। इस प्रकार दर्शन मोह उपशामक के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। अभी यहाँ देखो यहाँ तो दर्शन मोह का उपशामक यानी वो तो समय दृष्टि भी लेना, क्योंकि गुण श्रेणी कुछ काल तक तो बनी रही ना शुरुआत में, तो वहां ज्ञानावरणी का भी निर्जरा हो रही है, मिथ्यात्व की तो नहीं होगी, दर्शन मोहनी की तो नहीं होगी। देखो कोई कहीं पर भी जब तीन कर्ण परिणाम होते हैं तो आयु बिना सभी कर्मों की निर्जरा होती है। जो दर्शन मोहनी की उसमें केवल दर्शन मोहनी का ही निर्जरा हो रही है ऐसी बात नहीं लेनी है। मिथ्यात्व की तो कब तक होगी? कर्ण लब्धि तक होगी, उसके बाद उसका तो हमने देखा था ना जो अंतर है वहां पर उसका उदय ही नहीं, निर्जरा का सवाल ही नहीं है। परंतु जब अंतर में आया वो दर्शन मोहनी में अंतर था, उस समय भी ज्ञानावरणादि की भी गुण श्रेणी चलती रहती। हमने इवन श्रेणी में भी देखा था, आपको याद होगा तो उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी में अंतर पड़ता है, और अंतर पड़ता है हाँ तो गुणश्रेणी बाकी उनकी तो चलती रहती है ऊपर से, उनकी तो गुणश्रेणी बहुत लंबी बनी थी और इनकी भी शुरुआत में गुणश्रेणी बनी थी, पर उसी को वो गुणश्रेणी का जो टॉप मोस्ट पार्ट वो अंतर में चला गया था। दर्शन मोहिनी की उपशमना करने वाले का भी ऐसा ही था, शुरुआत में जब अपूर्वकरण गुणस्थान अपूर्वकरण परिणाम शुरू हुए तो आयु को छोड़कर सातों कर्मों की गुणश्रेणी बनाई थी, और जब अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीत गया तब बाकी कर्मों की गुणश्रेणी चलती रही वैसी, और इनमें बीच में गैप हो गया। गुणश्रेणी का रिमेनिंग पार्ट और उसके ऊपर के बहुत सारे संख्यात गुणा इतने निषेक, इतना उसने उसका अभाव किया, गैप तैयार किया, अंतर तैयार किया। परंतु जब दर्शनमोह का उपशमक कहेंगे उसके अंत तक ये गुणश्रेणी बाकी कर्मों की जो बनी है वो चलेगी वहां पर, ख्याल में आई बात? इसलिए ज्ञानावरण आदि सबकी उसके अंतिम समय तक लेना है। मिथ्यात्व की कब तक होगी? जब तक उसका जो जो अंतर का समय नहीं आया है, अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक होगी। यह गुणकार पंक्ति गुणश्रेणी है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी जो वो तो पहले गुणश्रेणी की रचना होती है और जब वो उदय में आते हैं तो गुणित प्रमाण में उसकी निर्जरा होती चली जाती है। गुणित प्रमाण, ये गुणित प्रमाण जो है उसका जो प्रमाण है वो भी ये 11 स्थानों में, वो प्रमाण भी गुणित प्रमाण में हो जाएगा, ये गुणकार भी बढ़ेगा। तथा गुणश्रेणी का गुण, गुणश्रेणी गुण अर्थात गुणश्रेणी गुणकार कहलाता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये समझ में आएगा? जहाँ गुणित प्रमाण में पंक्तिबद्ध रचना होती है और निर्जरा भी गुणित प्रमाण में होती है, तो जो गुणित कहते हैं तो उसकी जो गुण, उसका गुण यानी गुणकार का जो प्रमाण है उसको यहाँ कहेंगे। इसका भावार्थ यह है, सम्यक्त्व की उत्पत्ति में जो गुणश्रेणी गुणकार गुणकार सर्वोत्कृष्ट है वह भी आगे कहे जाने वाले गुणकार की अपेक्षा स्तोक है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी भले वो गुणित प्रमाण में है फिर भी आगे जो आगे 10 स्थान और बताएंगे, टोटल 11 है, उसमें से ये पहला स्थान है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उसका जो गुणकार है वो हाँ वो गुणित प्रमाण में है, गुणकार भी गुणित प्रमाण में है, यानी ये गुणकार सबसे छोटा है। संजदा संजदस्य गुणश्रेणी गुणों परमाणु की नहीं, इतने निषेकों में मान लेते, 10 निषेकों में दिया तो पहले देखो क्या होता है, जरा ये गुणश्रेणी होती है ना, क्या होता है, जीव के परिणाम कैसे विशुद्धि हो रहे हैं, करण परिणाम है, उसमें क्या हो रहा है, अपकर्षण हो रहा है, क्योंकि वहां स्थिति कांडक भी हो रहे हैं, स्थिति का घटना भी हो रहा है, परमाणु अधिक प्रमाण में नीचे आते हैं, तो नीचे आते हैं तो पहले कैसे दिए जाते थे, उदयावली में दिए जाते थे और ऊपर दिए जाते थे, अब कैसे दिए जाएंगे, उदयावली में भी दिए जाएंगे, बीच में कुछ निषेक जो अंतर्मूल प्रमाण है उनमें पहले निषेक में जितना दिया उससे दूसरे निषेक में वो जितना असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, तो बीच वाले कुछ निषेकों में ये गुणश्रेणी बनती है, फिर ऊपर उसके ऊपर जो निषेक है उसमें घटते क्रम से ऊपर सर्वत्र दिया जाता है, जिसको हम गोपुच्छ कहते हैं। उदयावली में भी कम घटते क्रम से दिया, गुणश्रेणी में असंख्यात गुणा क्रम से दिया, फिर ऊपर घटते क्रम से दिया, इसको गुणश्रेणी कहते हैं। तो जो जिस गुणित क्रम में दिया, पहले से दूसरे निषेक में कितने गुणा दिया, दूसरे से तीसरे में कितने गुणा दिया, वो गुणकार फिक्स है, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, परंतु वो जो गुणकार चौथे गुणस्थान में जाने वाले के लिए है या दर्शनों के उपशमक के लिए है, उससे आगे के पांचवे वाले, संयत वाले, संयता संयत वाले, इस सब यानी संयता संयत पहले लिए, बाद में संयत लिया, बाद में अनंतानुबंधी का विसंजना, उसमें अधिक है। ये बात हम कल पढ़ेंगे, संजदा संजत की बात कल चालू करेंगे। देखो, जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।